परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस शील भक्ति सिद्धांत रवि ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्री श्री शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हो गया। हरे कृष्ण। तो मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा इस साइड में आ जाएंगे, आप भी बोर्ड देख पाएंगे, जो जो भक्त आप लोग भी थोड़ा इस साइड आ जाइए। एक बार मैं क्लास दे रहा था, प्रारंभ करने जा रहा था, तो सब लोग पीछे बैठे हुए थे, तो वहां पे कुर्सी थी, मैं कुर्सी लेके पीछे चला गया ये व्यासासन बहुत बड़ा है ना, मैं इसको लेके सोच रहा था कि मैं इस तरफ सरकाना बड़ा मुश्किल है। तो हरे कृष्ण। एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक उच्चारण करेंगे और इसको हम कंठस्थ भी करने का प्रयास करेंगे आज। तो इसके राधा गोपीनाथ प्रभु ने ऐसा मुझे आदेश दिया कि आप चैतन्य चरितामृत से कुछ भगवान के शिव ग्रह के संदर्भ में कुछ कथा कहिएगा, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं भगवान के शिव ग्रहों का बारे कुछ चर्चा करूंगा, चैतन्य चरितामृत इस श्लोक का उच्चारण भी करेंगे। प्रथम ये श्लोक मेरे पीछे दोहराइएगा, फिर मैं आपको इसका अनुवाद बताऊंगा और फिर दोबारा उच्चारण करेंगे। प्रतिमान तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुमी अकार्या कारण तो इस श्लोक में भगवान से कह रहे हैं विप्र एक ब्राह्मण कह रहे हैं प्रतिमा नह कि आप प्रतिमा नहीं हैं आप केवल मूर्ति नहीं हैं आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं भगवान के शिव विग्रह से एक भक्त कह रहे हैं कि आप प्रतिमा नहीं आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं ब्रजेंद्र नंदन हैं और विप्रलागी कर तुमी अकार्याकरण आप अपने भक्त के लिए ऐसा कार्य कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किया है अकार्य जो पहले कभी नहीं किया भी वो कीजिए उसको कीजिए आप विप्रलागी अपने भक्त के लिए दोबारा उच्चारण कीजिए प्रतिमान तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुमी अकार्याकरण अच्छा हम लोग हमारा ऐसा है कि हम तीन बार उच्चारण करते हैं श्लोक फिर मैं बोर्ड को हटा देता हूँ फिर जिनको कंठस्थ हो गया है वो उच्चारण उसको उच्चारण करेंगे ऐसा ठीक है तो अभी मैंने एक बार मैंने अर्थ बताया हमने उच्चारण किया दो बार उच्चारण करेंगे और फिर जिन भक्तों को कंठस्थ हो गया है वो उच्चारण करेंगे बहुत सरल श्लोक हैं दो उच्चारण के बाद हम इस बोर्ड को हटा देंगे प्रतिमान तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुमी अकार्याकरण प्रतिमान तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुमी अकार्याकरण इसको इसको हाँ उल्टा करके हटा दो इसको बोर्ड को हटा दो उल्टा करके रख दो अरे उल्टा करके रखना पड़ेगा हाँ चलो ठीक है ओके हरे कृष्णा अभी जिन्होंने फोटो खींची है उसको मोबाइल को अपने जेब में रख लीजिए और बिना उसको देखे आपको उच्चारण करना है चलो उन्होंने मिटाई दिया ठीक है अभी आपके ये मेमोरी में छपा रहना चाहिए परमानेंटली है ना उच्चारण कीजिए जिनको कंठस्थ हो गया हम श्याम भक्त प्रभु आपने हाथ खड़ा किया था अच्छा मेरे को लगा आपने हाथ खड़ा किया उच्चारण करने के लिए बोलिए कीजिए प्रतिमान तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुमी अकार्याकरण देखिए आपका कुछ चूक हो जाएगा तो आपके आसपास बहुत भक्त लोग हैं आतुर हैं आपकी मदद करने के लिए आप प्रयास कीजिए सफल हो जाएंगे प्रयास में भक्ति का ये जो है विशेष भक्ति का बेनिफिट है आप प्रयास करेंगे आप शुरू करेंगे भक्तों की कृपा से कंप्लीट हो जाएगा हाँ प्रतिमानः तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुमी अकार्याकरण हरे कृष्ण प्रतिमानः तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुमी अकार्याकरण प्रतिमान तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुमी अकार्याकरण प्रतिमान तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुमी अकार्याकरण हरे कृष्णा देखिए वृंदावन बिहारी सुन रहे हैं हम कह रहे हैं कि आप प्रतिमा नहीं है आप स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन नंद महाराज के पुत्र हैं, स्वयं सुन रहे भगवान, है ना। और आपके मन की जो इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं की वो भी कर देंगे। माता जी इसमें देखो उच्चारण करना चाहेंगे, हाँ प्लीज थोड़ा ऊंचे स्वर में प्रयास करके। प्रतिमान तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्र लागे कर तुम्हें अकार्याकारण। हरि बोल। और भी माता जी उच्चारण कर सकते हैं, ऐसे मैंने कहा देखिए आप जो उच्चारण कर रहे हैं वृंदावन बिहारी सुन रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं। कीजिए, दोनों कर सकते हैं एक के बाद एक। प्रतिमान है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुम्हें अकार्याकरण। तो तीन चार माताओं जी ने एक साथ बोल के उच्चारण किया, अच्छा है। संकीर्तन तो सबका। हरे कृष्ण। तो यदि हम सभी ने उच्चारण किया तो ये बहुत सुंदर श्लोक है हमें याद दिलाने के लिए कि वास्तव में भगवान के शिव ग्रह उनसे अभिन्न है। साक्षात राधा कृष्ण आपके सामने हैं, साक्षात महाप्रभु आपके सामने हैं। तो इस श्रद्धा से, इस दृढ़ विश्वास से यदि हम सेवा करेंगे तो उसी तरीके से भगवान हमारे से आदान प्रदान करेंगे। तो प्रभुपाद कहते थे जो सोचते हैं कि हमने ये पत्थर की मूर्ति है और हम पत्थर को तोड़ सकते हैं तो भगवान उनके लिए पत्थर हो जाते हैं, और जो उनकी भगवान के श्री कृष्ण साक्षात भगवान है वैसे सेवा भाव से सेवा करते हैं तो उनसे वैसे ही आदान प्रदान करते हैं भगवान। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, इस तरह से। तो इस ये अध्याय है, पांचवा अध्याय है मध्य लीला का। मैं संक्षेप में आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा। इस कथा में हमारे लिए बहुत शिक्षा है, भूरी भूरी बहुत बहुत शिक्षा हमें इसे ग्रहण करनी है। तो बताया गया है कि दो ब्राह्मण थे वो तीर्थ यात्रा को निकले, युवा ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण, एक जवान था एक वृद्ध था। तो सब प्रकार के तीर्थ स्थान पे गए, हम तो एक दो चार तीर्थ स्थान पे जाते हैं, पहले लोग यात्रा पे निकला करते थे, कई कई महीना तीर्थ किया करते थे। उन्होंने तीर्थ यात्रा दक्षिण भारत से शुरू की, पूर्व भारत में चले गए, गया आदि स्थानों में गए, पूर्व भारत से फिर उत्तर भारत की तरफ आ गए, वाराणसी होते हुए प्रयाग होते हुए, दक्षिण भारत शुरू गई, फिर पूर्व भारत में गए, गंगा सागर आदि गया, ये धाम करते करते वाराणसी होते हुए प्रयाग आ गए, प्रयाग आने के बाद मथुरा आ गए। बड़ी लंबी तीर्थ यात्रा है, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ आ गए। तो लंबी तीर्थ यात्रा पे थे ये दो ब्राह्मण, और जब ये मथुरा आ गए, मथुरा से फिर वृंदावन आए। वृंदावन में जहाँ पे अभी इस समय पे गोविंद देव का मंदिर है बताया गया है, वहां पे गोपाल जी का मंदिर होता था पहले। जब गोपाल जी के दर्शन किए इन ब्राह्मणों ने तो बताया गया है, गोपाल सौंदर्य दुहार मन नीलहरी सुख पाया रहे तहां दिन दुई चारी। तो एक तीर्थ में एक दो दिन रहते थे हर तीर्थ में, परंतु जब वृंदावन आए और गोपाल जी का सौंदर्य देखा तो इनका मन जो है अति मुग्ध हो गया, बहुत आकर्षित हो गया गोपाल जी के सौंदर्य से। देखिए भगवान का सौंदर्य जो है बहुत अतुल्य है, भगवान का सौंदर्य। जैसे जैसा हमारा सेवा का भाव बढ़ेगा, हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा, वैसे वैसा हमारा मन उनसे आकर्षित होगा। तो गोपाल जी का सौंदर्य देख करके उनका मन बिल्कुल जो है हरा गया। बहुत भाग्यशाली है। इस संदर्भ में मैं आपको एक प्रभुपाद का पास्ट टाइम सुनाता हूँ, उनका लीला। प्रभुपाद जुहू में आए 1972 में, और राधा रास बिहारी थे वहाँ पे टेम्परेरी मेकशिफ्ट मंदिर में। तो प्रभुपाद आए और उन्होंने राधा रास बिहारी के दर्शन किए और बहुत सुंदर, बहुत मुस्कुराए प्रभुपाद, बहुत प्रसन्न हो गए, मुस्कुराए और फिर दंडवत करने लगे। दंडवत करते करते राधा रास बिहारी को देख रहे हैं सिर उठा करके, दंडवत पोजीशन में ही, और फिर मुस्कुरा रहे हैं प्रभुपाद। और मुस्कुराते मुस्कुराते फिर दोबारा दर्शन लेने चले गए। दंडवत करने के बाद दोबारा दर्शन लेने चले गए और फिर प्रभुपाद कहने लगे, तुंगभद्रा देवी दासी थी उनकी एक शिष्या, उन्होंने भगवान के लिए नई पोशाक बनाई थी। तो वो पोशाक जब उन्होंने देखी तो प्रभुपाद ने कहा, राधा रास बिहारी के लिए ऐसी हजारों पोशाक बनाइए। देखिए 1972 में कहा, हजारों पोशाक बनाइए ऐसी। और फिर प्रभुपाद ने कहा, और विशेष रूप से राधा रानी को बहुत अच्छे से सजाइए। मेक राधा रानी मोर ब्यूटीफुल देन कृष्णा, कृष्णा से भी अधिक सुंदर राधा रानी का श्रृंगार कीजिए, प्रभुपाद ने कहा उनको। फिर मेक राधा रानी मोर ब्यूटीफुल देन कृष्णा, फिर प्रभुपाद कहने लगे, फिर कृष्णा कभी नहीं जाएंगे यहां से। आप राधा रानी का श्रृंगार कीजिए, अति खूबसूरत, अति मनोरम, भगवान कृष्ण कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसी हजारों पोशाक बनाइए। इस तरह से प्रभुपाद ने 1972 में आदेश दिया। तो प्रभुपाद, जब हम जब सुंदर तरीके से भगवान का श्रृंगार करते हैं तो देखिए भक्तों का मन आकर्षित होता है भगवान की तरफ। तो ये दो भक्तों का भी मन जो है आकर्षित हो गया। तो जैसे जैसे मन हमारा भगवान की तरफ आकर्षित होगा, उनकी सेवा की तरफ, ये भौतिक चीज़ों से हमारा मन अनासक्त हो जाएगा धीरे धीरे। ये दोनों चीज़ एक साथ होता है, पैरेलल। क्योंकि इतना सुंदर भगवान के दर्शन हुए, उन्होंने डिसाइड किया अभी यहाँ थोड़ा दो चार दिन रह के दर्शन करेंगे अच्छे से। तो उन्होंने प्रायः एक एक दिन रुकते थे रात को हर तीर्थ पे, ज़्यादा समय नहीं था। तो यहाँ विशेष रूप से बताया गया, यहाँ दो चार दिन अधिक समय रुक गए भगवान के दर्शन करने के लिए, गोपाल जी के दर्शन करने के लिए। ये दो ब्राह्मणों में से, जैसे बताया, एक युवा था एक वृद्ध था। जो युवा ब्राह्मण था वो वृद्ध ब्राह्मण का सेवा किया करता था। तो विप्र जो वृद्ध ब्राह्मण था युवा ब्राह्मण से कहने लगा, विप्र वाले तुमी मोर बहु सेवा कैला, सहाय हैया मोरे तीर्थ कराइला। बोले आपने मुझे बहुत सेवा की, आपने मेरी कैसे सेवा की है, पुत्र ओ पितार ऐछे ना करे सेवन। पुत्र भी अपने पिता के इस प्रकार से सेवा नहीं करता। ये 500 साल पहले कह रहे हैं, देखिए कितना सेवा किया होगा, क्या भावना से। बोले कोई पुत्र भी अपने पिता का इस तरह से सेवा नहीं करता जैसे आपने मेरा सेवा किया है। आपके कृपा से मैं इतने तीर्थ स्थान भ्रमण कर, तीर्थ यात्रा, इतना बड़ा तीर्थ यात्रा कर लिया और मुझे श्रम भी नहीं हुआ। तो देखिए जो वृद्ध हैं उनको सहायता चाहिए होती है, उनको सहायता चाहिए होती है। तो कोई भी वृद्ध लोग हों, तो जो युवक हैं, हम यहाँ से क्या सीखते हैं, अभी ये यात्रा में आप लोग कोल्हापुर से यात्रा में आए हैं, है ना, कुछ लोग युवक हैं और कई लोग वृद्ध भी हैं। तो युवक जो हैं उनको हर प्रकार से, वृद्ध लोग को श्रम ना हो, उनकी हम क्या सहायता कर सकें, क्या सेवा कर सकें, वो ऐसा एक भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ शिक्षा मिलती है। तो विप्र, बड़े विप्र जो वृद्ध ब्राह्मण थे, वो कहने लगे, यदि मैं आपको, आपके प्रति कुछ कृतज्ञता व्यक्त ना करूं तो ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। ये कृतघ्नता का दोष है, ये कृतघ्नता का दोष छोटा दोष नहीं है, कहते बहुत बड़ा दोष होगा ये इससे। तो यहां से हमको क्या शिक्षा मिलती है, यदि कोई व्यक्ति कभी भी हमारे लिए कुछ सहायता किया हो तो हमें उसको सहायता को हम क्या बोल देते हैं, धन्यवाद बोल देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं। एक बात तो ये थैंक यू बोल दिया, दूसरा है कि हमको याद रखना है कि हमने उन्होंने हमारा सेवा किया, सहायता की है, तो जब समय आने पे हम भी उनके लिए कुछ करें, है ना। तो जो किसी ने हमारे लिए कुछ भी सहायता की हो उसको हमें भूलना नहीं है, और जब भी हमें ऐसा मौका आए या अपने प्रयास से भी हमें वो कुछ उनके लिए भी हमें कुछ सेवा करना है कभी ना कभी, नहीं तो वो कृतघ्नता हो जाएगी, ऐसा है। और कृतघ्नता जो है बहुत बड़ा दोष है, वो कहते हैं, तो कहते हैं कि मैं आपको केवल थैंक यू कहना नहीं चाहता, मैं भी कुछ आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सिर्फ थैंक यू कहना तो बहुत आसान है, वो भी बहुत बार लोग नहीं कहते, जो जो सबसे सरल है, पर ये तो अति सरल है, पर सिर्फ थैंक यू नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए सोच के कि मैं इनके लिए क्या कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक पुत्री है, विवाह के लायक हो गई है, और आप भी युवक हैं, मैं मेरी कन्या का विवाह आपसे करने का वचन देता हूं, ऐसा वृद्ध ब्राह्मण ने कह दिया। तो अभी यहां पे पता चलता है कि जो वृद्ध ब्राह्मण थे ये बहुत बड़े परिवार से थे, बड़े धनवान थे, बड़े कुलीन थे, ऊंच ऊंच कुल के ब्राह्मण थे, और बहुत पढ़े लिखे भी थे, इनकी कन्या भी बहुत पढ़ी लिखी हुई थी। और ये युवक ब्राह्मण जो हैं वो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना धनवान थे, और ब्राह्मणों में भी थोड़ा उनका निम्न कुल था, उच्च कुल के नहीं थे। तो अभी सोचिए कोई बहुत बड़े घर की लड़की का रिश्ता आता हो स्वयं से, तो उनको तो मन में लड्डू फूटने चाहिए, है ना। ऐसा ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अखबारों में ऐसा वो देते हैं ना, एडवर्टीजमेंट देते हैं मैट्रिमोनियल में, वो लिख देते हैं कि मेरी तनख्वाह है महीने की 1 लाख, और बाद में पता चलता है कि 10,000 है, वो बोलते नहीं, वो 1-0 मिसप्रिंट हो गया है? तो एक तो बड़ी बड़ी कोई घर की कन्या को आकर्षित करने के लिए बड़े घर में रिश्ता हो जाए, ऐसा झूठ मूठ बहुत लोग करते हैं, ऐसा ऐसा बहुत से फॉर्जर केस पकड़े गए हैं, तो लोग बहुत झूठ झूठ बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, मकारी करते हैं। तो देखो इनको तो स्वयं से एक बड़े घर से रिश्ता आ रहा है, लेकिन ये ब्राह्मण क्या कहते हैं, छोटा विप्र कहे सुन विप्र महाशय, असंभव कह केने यही नहीं है। बोले आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी समाज में, ये तो असंभव बात कर रहे हैं आप, क्यों आप इतने बड़े घर के, इतने धनवान, आपकी लड़की इतनी पढ़ी लिखी, और मैं एकदम बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ, नहीं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो ऐसा समाज में नहीं होता है ऐसा जैसा आप कह रहे हैं, तो इस बार इस तरह की बात ही मत कीजिए, वो कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत उनको कह दिया कि इस प्रकार की बात मत कीजिए। फिर क्या कहते हैं, अभी जो ये बात कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, इससे हमको बहुत शिक्षा मिलती है। कन्यादान पत्र अमीनाहि तुमार, कृष्ण प्रीत करी तुमार सेवा व्यवहार। तो कहते हैं कि मैं आपकी कन्या का विवाह करने के लायक नहीं हूं। क्या कह रहे हैं, मैं आपकी कन्या के विवाह के, मैं आपकी कन्या के लायक नहीं हूं। देखो ये संसार में कोई कहता है ऐसा, हम जैसे नौकरी के इंटरव्यू देने जाते हैं या कुछ भी कार्य करने जाते हैं, कोई हमसे पूछे कि अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन, अरे मैं तो ज्यादा योग्य हूं, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उससे ज्यादा मेरी योग्यता है। कोई कहता है कि संसार में कोई कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। लेकिन ये ब्राह्मण जो है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनके मन में ऐसा नहीं कि कोई लोभ नहीं किसी प्रकार का, कोई काम वासना नहीं, साफ साफ कहते हैं कि मैं आपकी कन्या के लायक नहीं हूं। और आप सोच रहे हैं कि चलो लायक नहीं है लेकिन मेरी इतनी सेवा की कुछ तो देना चाहिए। कृष्ण प्रीते करी तुमार सेवा व्यवहार, मैंने आपकी सेवा कुछ पुरस्कार के लिए नहीं की, मैंने जो आपकी सेवा की मुझे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है कि मेरी सेवा के आदान प्रदान में आप मुझे कुछ पुरस्कार दीजिए, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो इसलिए मैंने आपकी सेवा की। ये बात कह रहे हैं छोटे ब्राह्मण, विचार कीजिए इस पे। देखिए हम जब भी प्रभुपाद कहते हैं, भक्तिदानंद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि जो भी हम कार्य करें ये भावना से कि भगवान प्रसन्न हो बस, कि मुझे इससे कुछ मिले। इस संसार में जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, भक्ति में भी हमारी ऐसी भावना रहती है, हम जो भी कार्य करते हैं हम सोचते हैं मुझे इससे क्या प्राप्त होगा, मेरे लिए क्या है इसमें, ये भावना हमारी निरंतर बनी रहती है। लेकिन जब हमारे भगवान हमारे घर में आ जाएं, हमारे शहर में, हमारे कम्युनिटी में आ जाएं, तो ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं, एकमात्र वो प्रसन्न हो बस। ऐसी भावना ये बहुत शुद्ध भावना है कि भगवान प्रसन्न हो, मैं उनके प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा की, आप उनके भक्त हैं, आपकी सेवा करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। और अलभ्यम किम अलभ्यम भगवती प्रसन्न शीनी केतने, भागवतम में बताया गया है, अरे क्या आपको संसार में ऐसी वस्तु है जो पानी कठिन हो जाएगी या नहीं पा पाएंगे यदि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है। स्वयं से ही यदि भगवान प्रसन्न है तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कहने का, बोलने का, कुछ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तो कृष्णा प्रीते करी तुम्हार सेवा व्यवहार, तो जो भी हम कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, ये छोटे विप्र हमको यहाँ पे सिखाते हैं। फिर बड़े विप्र कहते हैं, अरे आप संशय मत कीजिए, मैंने निश्चय कर लिया है मेरी कन्या का विवाह मैं आपसे करूंगा। फिर इनको छोटे ब्राह्मण कहते हैं, अरे कहते हैं आपके निश्चय से क्या होता है, भीष्मक ने निश्चय किया था, पहले की कोटेशन करते हैं, भीष्मक ने निश्चय किया था, क्या निश्चय किया था भीष्मक ने, कल सुना ना आपने, रुक्मिणी का विवाह मैं कृष्ण से करूंगा, लेकिन उसका पुत्र बोलता है तुम चुप रहो थोड़ा, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम बूढ़े हो गए हो, अब डिसीजन मेकिंग मेरी है, है ना। जैसे विष्णुपुरे बोला, बड़ा हो गया पुत्र तो बाप को शांत कर देता है, तो कर दिया उसने, अपने पिता को शांत कर दिया रुक्मी ने, और कहा रुक्मिणी के विवाह कहाँ होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, अभी आप थोड़ा शांत होकर बैठ जाइए। तो पिता की बात नहीं चली, तो कहते देखिए भीष्मक शादी करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, आपके कितने ज्ञाति हैं, रिश्तेदार हैं, पुत्र है, आप करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं करने देंगे, इसका प्रमाण है, ऐसा बोल देते हैं। फिर भी ये जो वृद्ध ब्राह्मण है, बड़े विप्र है, कहते हैं अरे कन्या मतलब क्या, पिता का अधिकार है शास्त्रों में दिया गया, पिता कन्या दान करता है, दान का क्या अर्थ है कि कन्या जो है पिता का धन है। तो वो कहते हैं बड़ा विप्र कहे कन्या मोर निज धन, अरे कन्या मेरी धन है और शास्त्र में कहा गया पिता को कन्या दान करना है, तो मेरा धन कहाँ दान करना है वो मैं डिसाइड करूंगा कि बाकी लोग डिसाइड करेंगे है? तो ये बोल के वो कहते हैं मैं आपको दोबारा वचन देता हूं, मेरी कन्या का विवाह आपसे होगा, तो ऐसा उसने कह दिया। तो फिर अभी छोटा विप्र कहता है ठीक है, अभी आप इतना बोल रहे हैं, आपका इतना दृढ़ विश्वास है, इतना मन है, तो ये बात आप गोपाल जी के आगे कह दीजिए, गोपाल जी के आगे चल के कह दीजिए। तो देखिए जो छोटा ब्राह्मण था ये बहुत बुद्धिमान था, इसको पता था कि अभी इसमें बहुत जोश है, बाद में ये ठंडा हो जाएगा। ऐसा होता है, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, एक बार एक भक्त आए, एक वेलविशर थे, मंदिर आए, बोले प्रभु जी क्या सेवा है, उन्होंने मंदिर में प्रसाद स्वाद लिया, भगवान के दर्शन लिए, कीर्तन सुना, बोले प्रभु जी क्या सेवा है, मैंने बोला जन्माष्टमी आ रहा है आप कलश अभिषेक कीजिए, कर दिया प्रभु जी हो गया, तुरंत बोल दिया। तो फिर मैंने उनको पैम्फलेट दे दिया उसका, उसमें 41,000 था, हाँ प्रभु जी बिल्कुल मैं आपको एक दो दिन में चेक पहुंचाता हूँ। और जो घर गया तो उसकी बीवी ने उसको जरा अच्छा जी तो उसको जो पूरे जो उसको जोश था वो निकाल दिया। फिर मेरे को फ़ोन करने लगा, प्रभु जी थोड़ा क्षमा कीजिए, वो बजट में फिट नहीं बैठ रहा है, मैं थोड़ा ये दिव्य स्नान होता है 7,000 वाला ये करता हूँ। तो देखिए जोश आ गया उसको, और बाद में वो जोश बाद में ठंडा पड़ गया, ऐसा घर पे गया, घर वालों ने ऑब्जेक्शन दिया, जो भी है जैसा देखा गया, बहुत लोग को मंदिर में आते हैं, धाम में जाते हैं तो जोश आ जाता है, कुछ उत्साह आ जाता है, लेकिन फिर बाद में वो उत्साह बाद में कम हो जाता है, ऐसा कई बार देखा गया है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कई बार कि जब हमें भगवान को आत्मसमर्पण करने का ऐसा उत्साह आए तो करना चाहिए, उस समय उसको विलंब नहीं करना चाहिए ज़्यादा, विलंब करेंगे तो वो जो उत्साह आया है वो चला जाता है। तो अच्छे कर्म में, भगवान भक्ति के कर्म में जब उत्साह आ जाए ऐसा करना चाहिए तो कर देना चाहिए, तुरंत वो बोलता है कि चक मैं दे ही देता हूँ, घर जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, फिर बुद्धि बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, दूसरों का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये विप्र जो है, छोटे विप्र, पहले से ही उन्होंने ये भांप लिया कि ये अभी बहुत उत्साह में बोल रहा है लेकिन बाद में ये नहीं कर पाएगा। तो और बड़े विप्र ने भगवान के सामने ये बोल दिया कि हे भगवान, आप जानिए मेरी कन्या, मैं इनको दान में देता। तो ऐसा बोल के दोनों अपने घर आ गए और बाद में वही हुआ, उनके पुत्र ने, उनकी बीवी ने कहा, आप ऐसी बात मुख से निकाले तो कैसे निकाले, उन्होंने बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की। तो बोलते, अरे लेकिन मैंने भगवान के सामने वचन दिया है। अरे भगवान के सामने वचन दिया, भगवान कहाँ पे, वो तो बहुत दूर है अभी यहाँ से, वो कोई वचन वचन नहीं, आपने ऐसी बात कही तो हम जहर खा के मर जाएंगे। उनकी उनके बीवी और उनके पुत्र ने ये बात कह दी तो भी बहुत घबरा गए, बहुत घबरा गए। और उनके जो ज्ञाति हैं बोलते, हम आपसे हर प्रकार का रिश्ता तोड़ देंगे। तो ये बहुत प्रेशर में आ गए। फिर बोलते, लेकिन मैंने जो वचन दिया है उसका क्या होगा, और वो भगवान के सामने वचन दिया है। तो उनका पुत्र बोलता है, आपको ऐसा बोलने का जरूरत नहीं कि मैंने वचन नहीं दिया है, बस ऐसा बोल दीजिए कि थोड़ा कुछ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चालाकी कीजिए, ऐसा मत बोलिए कि मैंने नहीं बोला है लेकिन मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा, ऐसा बोल दीजिए, चालाकी कीजिए थोड़ा। तो वो उसमें उन्होंने प्रेशर डाला। और फिर जब ये छोटा ब्राह्मण आया पूछने, तो ये पहले तो उनका लड़का जो है लाठी लेकर उनके पीछे भागा उसको मारने के लिए। उसने सभी गांव वालों को बुला लिया कि देखिए, इनके पिताजी ने जो है, वृद्ध ब्राह्मण ने ये प्रॉमिस किया, अभी ये पूरा नहीं कर रहे। सभी गांव वाला आ गए, पंचायत लग गई, सबको बुला लिया गया और उनसे पूछा, भाई बताइए, ये कह रहे हैं कि आपने अपनी कन्या का हाथ इनके हाथ में दिया है, अभी आप ये क्यों नहीं कर रहे यदि आपने ऐसा वचन दिया है। तो वो ब्राह्मण जो है वो बोले कि मुझे कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा कि उनका छोटा लड़का आगे कूद पड़ा, बोलता, देखिए ये ब्राह्मण ने मेरे पिताजी को धतूरा खिला दिया, नशा करवा दिया, और जो भी पैसा था वो उनसे ले लिया, केवल पैसा नहीं ये वचन भी उठवा लिया। आप देखिए इसकी क्या योग्यता है मेरी बहन से शादी करने की, आप सोचिए इसकी क्या योग्यता है, ना तो इसके पास धन है, ना ये ऊंचे परिवार का है, ना ये पढ़ा लिखा है, कहाँ मेरी बहन, कहाँ ये, इसी को योग्यता है, आप सोचिए। तो सोचने लोग विचार करने लगे कि धन के लोभ में कई प्रकार के दुष्कार्य करते हैं लोग, क्या मालूम भाई। तो ये छोटा ब्राह्मण जो है बोलने लगा, उन्होंने कहा, देखिए ये जो बड़े ब्राह्मण हैं ये वास्तव में ये सत्यवादी हैं, ये करना चाहते हैं, देना चाहते हैं अपनी कन्या, लेकिन अपने परिवार वालों के प्रेशर में ये ऐसा कह रहे हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात के साक्षी जो हैं वो स्वयं भगवान हैं, उनकी बात तो सब लोग मानेंगे ना, मेरी बात को ये बोला झूठ है, बताइए अगर भगवान आके ये बात को साक्षी दे देंगे तो फिर। तो ये ब्राह्मण जो था वापिस आने से पहले भगवान को बोल के आया कि हे भगवान, यदि जरूरत पड़ी तो आपको बुलाऊंगा। देखिए कितना ये पारदर्शी था, ये कितना बुद्धिमान भी था और पारदर्शी था, भगवान को बोल के आया आने से पहले कि यदि जरूरत पड़ी तो आपको बुलाऊंगा मैं। तो ये फिर दोबारा वृंदावन गया, दक्षिण भारत से, विद्यानगर में रहते थे, दोबारा वृंदावन गया और जाकर के भगवान से क्या कहता है कि हे भगवान, आप भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, आपके जो भक्त हैं बड़े ब्राह्मण उनके वचन की रक्षा करने के लिए आप चलिए। देखिए ये नहीं कहता कि मेरी शादी के लिए चलिए, है ना, मेरे बाराती बनिए, ऐसा नहीं कहता है। वो कहते हैं, कन्या पाप मोर मने इहा नाही सुख, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे एक सुंदर कन्या से विवाह करने का सुख प्राप्त हो, एक धनवान कन्या से, पढ़ी लिखी लड़की से विवाह करने का सुख प्राप्त हो, मैं इसलिए आपसे निवेदन नहीं कर रहा। कन्या पाप मोर मने इहा नाही सुख, ब्राह्मण नेरा प्रतिज्ञा जाए यही बड़ा दुख। यदि वो ब्राह्मण की प्रतिज्ञा चली जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि पहले के समय में प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ऐसी अपने प्राण निछावर कर देते थे लोग, अपने वचन को झूठा नहीं होने देते थे। और भगवान के सामने कहा हुआ वचन, धाम में कहा हुआ वचन झूठ हो जाए, ये बहुत बड़ा महापाप है। हम यदि किसी को वचन दें धाम में भगवान के सामने और उसको ना पालन करें, ये बहुत बड़ा पाप है। तो कहते हैं उनको इतना बड़ा पाप लगेगा, ये दुख मेरे से सहन नहीं हो रहा, उनके धर्म की रक्षा करने के लिए आप चलिए। वो सत्यवादी हैं, लेकिन अपने फैमिली प्रेशर के अंडर में वो जो अपना वचन है उसको निभा नहीं पा रहे हैं। उनकी भक्ति के बल पे मैं आपको बुलाने आया हूं, कहते हैं। सोचिए हम यहां पे क्या सीखते हैं। हम भगवान से जब प्रार्थना करें अपने लिए नहीं, अन्य भक्तों के लिए प्रार्थना करें। वास्तव में अपने लिए तो सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वैष्णव वही है जो दूसरों के दुख को देख करके भगवान के सामने गिड़गिड़ाए कि मुझे उन भक्तों बहुत दुख में है, आप उनकी मदद कीजिए, उनके ऊपर कृपा कीजिए। ये बहुत सुंदर भाव है यहाँ पे उनका। तो फिर वो कहते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है, उनसे बोलते हैं आप चलिए, मैं वहां पे आविर्भाव हो जाऊंगा मेरा। अच्छा, जब वहां पे बातचीत हुई कि ठीक है भगवान आके साक्षी देंगे तो फिर मामला सेटल हो जाएगा, तो छोटे विप्र ने उनको क्या कहा, अभी हमको एक कागज पे लिख के लेना है और साइन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि बाद में फिर मुकर जाएंगे, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि यदि भगवान आगे साक्षी देंगे, ताकि फिर बाद में कोई दोबारा प्रॉब्लम ना हो। तो उसने एक लिखित एफिडेविट बनवाया और उसके ऊपर लिखा गोपाल स्वयं आके साक्षी देंगे तो वो फिर ये बात सेटल हो जाएगा। तो उन्हें कहा हे भगवान, आपको इस द्विभुज रूप में चलना पड़ेगा, परमात्मा के रूप में वहां पे आविर्भाव होगा और आप आपकी वाणी सुनेंगे लोग, ऐसा नहीं चलेगा। एफिडेविट में लिखा है कि आप आएंगे गोपाल के शिव विग्रह चल के आएंगे स्वयं और साक्षी देंगे तो फिर बात मानी जाएगी। तो भगवान उनसे कहने लगे, अरे कभी प्रतिमा चलती है क्या, ये क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कभी होता है क्या प्रतिमा चलती है? तो कहने लगे, अरे प्रतिमा कभी बोलती है क्या? इफ यू कैन टॉक यू कैन वॉक, सो नाउ वॉक योर टॉक। भगवान की क्या वॉक योर टॉक? भगवान कहते हैं नमे भक्ता पुनश्यति। कौन किस भक्त की बात कर रहे हैं? बड़े विप्र की बात कर रहे हैं। आपके बड़े विप्र का धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप चलिए अभी। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, फिर उनको भगवान को कहते हैं प्रतिमानः तुमि साक्षात् ब्रजेंद्र नंदन विप्र लागी कर तुमि अकार्याकारण। तो ये ब्राह्मण कहते हैं आप प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है और आप वो कार्य कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किया है। तो भगवान कहते हैं चलिए आपके पीछे पीछे चलूंगा, रोज मेरे को 1 किलो चावल भोग बना करके भोग लगाइएगा और मैं आपके पीछे चलता रहूंगा, मेरी नुपुर की ध्वनि आपको सुनाई देगी, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, पीछे मुड़ के मत देखिए, मैं चलता रहूंगा अदृश्य रूप से, बाकी लोग को दिखाई नहीं देगा, केवल आपको नुपुर ध्वनि सुनेगी। तो फिर भगवान उनके पीछे पीछे चल के कितने दिन तक भगवान चले किसको मालूम है? कोई किसी को मालूम है कितने दिन तक भगवान चले? हाथ खड़ा करके जिसको मालूम है बताइए, गैस कीजिए। कुछ आवाज आ रही है धीरे धीरे से, 40 दिन और कुछ गैस, 7 दिन, 1 रात में ओवरनाइट जर्नी, 1 नाइट, 1 हफ्ता, 1 महीना, वो सवा महीना बोले हैं और 1.5 महीना, 1.5 महीना और कोई गैस। तो देखिए चैतन्य चरितामृत में कंप्लीट उल्लेख किया गया कितने दिन चले, बताया गया है पदभ्याम चलन्या प्रतिमा स्वरूपो, अपने पैरों पे चल के भगवान, पदभ्याम चलन्या प्रतिमा के स्वरूप में पैरों पे चल के जा रहे हैं। पद्भ्यां चलन्या प्रतिमासरूपो ब्रह्मण्य देवो हि शताहगम्यम्। 100 दिन तक चल के गए भगवान, शताहगम्यम्, 100 दिन पैदल चल के अपने पैरों पे भगवान वृंदावन से दक्षिण भारत आए, फॉर 100 डेज। तो देखिए भगवान के कितना उनका भक्तों के प्रति उनका कितना प्रेम है, और प्रेम है और क्यों चल के आ रहे हैं, क्योंकि ये छोटे ब्राह्मण की कितनी निस्वार्थ भावना है। क्या भावना थी उन्होंने सेवा की थी, कि आप प्रसन्न हो। तो क्योंकि उसने दूसरे एक भक्त के का सेवा किया और दूसरे भक्त के लिए बुलाने आ रहे हैं, अपने लिए नहीं, दूसरे भक्त के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान उनसे अति प्रसन्न थे। अपने पैरों पे चल करके 100 दिन वृंदावन से चल करके दक्षिण भारत में विद्यानगर तक आए भगवान, और आने के बाद उन्होंने साक्षी दिया, और फिर छोटे विप्र का भगवान के गोपाल जी के सामने विवाह हुआ, और उसके बाद ये छोटा विप्र शादी करने के बाद भगवान का ही पुजारी बन गया, दोनों मिलके भगवान की सेवा करने लगे, बड़ा विप्र भी। तो इस तरह से भगवान ने बहुत ही विशेष लीला की, बहुत विशेष कृपा की, क्योंकि उनकी ऐसी सेवा की भावना थी। तो देखिए भगवान के शिव ग्रह अभी कोल्हापुर में आएंगे, जितने निस्वार्थ भावना से हम सेवा करेंगे वैसे वैसे जो है भगवान हमारे से आदान प्रदान करेंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे, कुछ एक तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि किस तरह से भगवान की सुंदरता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम सेवा करेंगे, जैसे जैसे हम सेवा करेंगे भगवान की सुंदरता बढ़ती जाएगी। तो ऐसा देखा गया है जुहू में, मुझे ब्रजहरि प्रभु ने, उन्हें भक्तों ने बताया है, राधा रास बिहारी के जो पहले के, बहुत पहले के कपड़े थे वो टाइट हो गए, उन्होंने भगवान को इतना फीस्ट खिलाया थोड़ा पेट बढ़ गया। तो उन पहले कपड़े टाइट हो गए, तो नया आउटफिट का माप जो है बहुत पुराने आउटफिट से मैच नहीं होता है। देखिए तो ऐसा भगवान आदान प्रदान करते हैं, उन्होंने भी थोड़ा वेट गेन कर लिया भक्तों ने खिलाया, तो आप विश्वास करें नहीं करें सत्य बात है, ऐसा भगवान की सुंदरता बढ़ती रहती है। एक बार प्रभुपाद आए एक मंदिर में, उन्होंने भगवान के विग्रह को देखा और कहा भगवान बहुत थके हुए लग रहे हैं, कृष्ण बहुत, राधा कृष्ण थके हुए लग रहे हैं, क्या कारण है, आप उनको समय से सुलाते हैं कि नहीं। तो भक्तों ने बताया कि हमने मंगल आरती 4:30 की जगह 3:30 बजे कर दी है एक मंदिर में, उसका क्या कारण है, और रात को किताब विताब बांट के लेट नाइट आ रहे थे, 1:30 बजे वापिस आते थे। उन्होंने कहा हम 1:30 बजे वापिस आ रहे हैं, 1:30 से हम क्या करेंगे, 2 घंटा जप करेंगे, 3:30 तक मंगल आरती करेंगे, फिर सो जाएंगे हम लोग, ऐसा युक्ति लगाई, नए नए भक्त थे, 3:30 बजे मंगल आरती शुरू कर दी, तो भगवान को और जल्दी उठाने लगे, तो नींद कम हो रही थी, नींद कम हो रही थी तो भगवान थके हुए थे। तो प्रभुपाद ने देख लिया, देखिए शुद्ध भक्त जान सकते हैं, हम लोग ना भी पहचान पाए, उन्होंने पहचान लिया कि भगवान थके हुए हैं। तो इस तरह से फिर प्रभुपाद ने कहा हम भगवान हमारी सुविधा के लिए नहीं आए यहाँ पे, कि हमको क्या सुविधा मंगल आरती के लिए। प्रभुपाद ने कहा इस तरह से नियम नहीं है, भगवान के सेवा में जो नियम हमको दिए गए हैं उसका हमें पालन करना है, हम उनके सेवक हैं, हमारे सेवक नहीं कि हमारी सुविधा के हिसाब से वो उठेंगे, उनकी सुविधा के हिसाब से हमको उठना है, उनकी सुविधा के हिसाब से हमको सेवा करना है, ये भाव से हमको सेवा करना है। अच्छा, और प्रभुपाद की एक बहुत सुंदर कथा है श्री विग्रह के रूप में। प्रभुपाद एक बार अपने साथ में भगवान के शिव ग्रह लेके गए और उसको ऑस्ट्रेलिया में इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में इंस्टॉल करने के लिए गए तो वहां पे जाके देखा वहां पे कोई भी तैयारी नहीं, घी नहीं, कापूस नहीं, कापस वृक्ष बनाने के लिए, फूल भी नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं। आप सोचिए, मतलब आरती की भी तैयारी नहीं, भगवान की इंस्टॉलेशन तो दूर की बात। तो प्रभुपाद सोचने लगे, अरे ये तो बिल्कुल तैयारी नहीं है यहाँ पे, तो ब्राह्मण दीक्षा भी देने वाले थे और इंस्टॉल करने वाले थे, किसी को कुछ आइडिया नहीं कि भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि कैसे, क्या करूं मैं, इंस्टॉल करूं तो इनको कुछ भी ट्रेनिंग ही नहीं है। फिर प्रभुपाद सोचने लगे, लेकिन मैं शायद यहाँ पे दोबारा नहीं आ पाऊंगा, मैं यहाँ दोबारा नहीं आ पाऊंगा। इसलिए प्रभुपाद ने भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, मैं आपको इनके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, इनको तनिक मात्र ज्ञान नहीं कैसे सेवा करनी है, आप ही इनको डीडी वर्शिप सेमिनार दे दीजिएगा, आप सबके हृदय में विराजमान है, आप इनको प्रोत्साहन दीजिएगा कैसे आपकी सेवा करनी है, मैं दोबारा से नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं आपको इंस्टॉल करके जा रहा हूँ, जबकि कुछ सेवा की व्यवस्था नहीं थी। ऐसा प्रभुपाद इंस्टॉल करके भगवान से प्रार्थना करके चले गए, तो भगवान ने स्वयं ही उनको ऐसा प्रेरणा दी, भक्तों ने सुंदर पोशाक बना दी, तभी कोई ऑल्टर भी नहीं था, सुंदर ऑल्टर बना दिया और कुकिंग भी सीख गए, अच्छा भोग भी लगने लग गया। एक साल बाद प्रभुपाद आए तो उन्होंने देखा गोपीनाथ की, उनका नाम था गोपीनाथ विग्रह, तो गोपीनाथ जी की सुंदर सेवा हो रही है, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए। देखिए शुद्ध भक्त जो है, जो प्रार्थना की स्वीकार की, ऐसा तो शुद्ध भक्त की प्रार्थना से भगवान जो है आविर्भाव होते हैं, उनका आविर्भाव होता है जब शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं। अच्छा, भगवान की सेवा में सबसे सुंदर अलंकार क्या है, कौन बताएगा? अर्च विग्रहों की सेवा पूजा में सबसे सुंदर अलंकार क्या है, कोई गैस कर सकता है? तुलसी, बहुत अच्छा। और कुछ? मोर, मोर पिच भी जरूरी है भगवान के श्रृंगार में। और कुछ? बांसुरी, ये भी बहुत अच्छा बोला। और कुछ? और कोई गैस? फूलों की माला, हाँ, भक्तों का भाव, ये भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो एक बार क्या हुआ, राधा गोपीनाथ मुंबई में श्रृंगार दर्शन, जैसे 7 बजे श्रृंगार दर्शन खुला, श्रृंगार दर्शन खुला, सब भक्त लोग दंडवत किया, दर्शन किए, दर्शन करने के बाद गुरु पूजा शुरू हो गया और भक्त लोग नृत्य करने लगे, नाचते हैं हम लोग गुरु पूजा में, सब लोग नाच रहे थे आज गुरु पूजा में, भक्त लोग नृत्य करने लगे। पुजारी जो था वो मोर का पंख जो है गिर गया, लगाने लगा, या कुछ भूल गया, कुछ फूल वगैरह लगाना भूल गया, तो पुजारी ने क्या किया, थोड़े समय के लिए दर्शन बंद कर दिया। तो परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज ने हेड पुजारी को बुलाया और कहा कि दर्शन तुरंत खोलो। हेड पुजारी ने कहा, महाराज पुजारी कुछ भूल गया श्रृंगार करना। महाराज ने कहा, सबसे उत्तम श्रृंगार है संकीर्तन, भक्तों का संकीर्तन, ये सबसे ज्यादा भगवान को पसंद है, जो भक्त नृत्य कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, अति सुंदर श्रृंगार है, भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्त लोग प्रेम से उत्साह से उनके सामने नृत्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं। दर्शन तुरंत खोल दो, उन्होंने कहा, बिल्कुल बंद मत रखो, ये भगवान को देखने दीजिए, ये उनका अलंकार है, ऐसा बोला। तो सबसे महत्वपूर्ण भगवान के शिव विग्रह आए, उनके सामने जितना कीर्तन हो, भजन करें, बैठ के कीर्तन करें। पुजारी को भी भोग लगाने के बाद कुछ भजन गाना चाहिए। अब देखिए घनश्याम बाबा, आपने सुना है उनका स्टोरी, प्राय वृंदावन में जो बाबा थे घनश्याम बाबा, अपने विग्रह को बहुत समय, अधिक समय, उनका मेन जो भगवान का सेवा था वो था उनके सामने भजन कीर्तन करना, वो उनका मेन डीडी वर्शिप था। तो हम जितना समय उनके सामने कीर्तन करें, भजन गाएं, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्नामेंट है। आप फूल भूल गए तो भी चलेगा, बांसुरी भी उस दिन नहीं लगाई है ना, तो भी भगवान उतना मतलब लगाना चाहिए, पर फिर भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भक्त लोग मिलकर उनके सामने कीर्तन करें, उससे सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा भगवान को जो अप्रसन्न करता है वो क्या है, भक्तों में जब झगड़ा होता है। तो एक बार डीडी किचन में झगड़ा हो गया, माताओं के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ लेकर के क्या बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, फीस्ट के बारे में कुछ ऐसा थोड़ा झगड़ा हो गया। तो परम पूज्य राधना स्वामी महाराज तक बात पहुंच गई। उन्होंने कहा, यदि माताएं झगड़ा कर रही हैं और भगवान का भोग बना रही हैं, तो उनका भोग जो है वो पूतना के जहरीले स्तनों की तरह भगवान को लगेगा, ऐसा महाराज ने कहा। दूसरी बार, एक बार जो गार्लैंड बनाती है माता जी, उनमें कुछ मतभेद हो गया, कुछ तो कि मैं गोपीनाथ गार्लैंड बनाऊंगी, तुम गाय का गार्लैंड बनाओ। फिर भगवान का गार्लैंड भी, उसमें गाय का भी होता, देखिए गाय को भी हार पहनाते हैं, तो जो भगवान को हार पहनाया उसका, उसको ज्यादा जो जो ज्यादा जिसकी ये है स्किल है, जो सीनियर है वो बनाते हैं ऐसा प्राय। तो ऐसा कुछ झगड़ा हो गया नहीं, भी अभी मैं भगवान का गार्लैंड बनाऊंगी, मुझे भी चांस मिलना चाहिए, ऐसा मतभेद हो गया आपस में। वो दोबारा महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने दोबारा कहा, यदि जो माताएं गार्लैंड बना रही हैं और आपस में झगड़ा कर रही हैं, तो वो गार्लैंड पहन के भगवान को कांटों का हार लगेगा, वो कांटों का हार लगेगा। तो देखिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है भक्तों में प्रेम और मैत्री। यदि झगड़ा है, इतना मतभेद है, भगवान को वो सेवा भाएगी नहीं, और सेवा सरल भी होगी लेकिन प्रेममय, आपस में मैत्री है, आपस में भक्त लोग कीर्तन करते हैं भगवान के सामने आके, वो सेवा उनको अति भाएगी। तो ये बात भी हमको परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बताते हैं। तो ऐसा भगवान की सेवा में कई प्रकार के विधि हैं, उनके आने से जो है अति उल्लास, जैसे जैसे हम उनकी सेवा करेंगे भगवान का सुंदरता बढ़ता जाएगा, उनकी कृपा कटाक्ष से हमारी भक्ति में वृद्धि होगी और हमारे जीवन में अत्यंत उल्लास, भक्ति का उल्लास, उत्साह आदि उनकी कृपा से प्रवर्तित होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, माइक्रोफोन है यहाँ पे, देखिए चल रहा है। हाँ, माइक्रोफोन दे दीजिए। हरे कृष्ण।
सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कथा की साक्षी गोपाल जी का। जस्ट एक प्रश्न ऐसा था कि जो कथा में आपने बता रहे थे, साक्षी गोपाल लोग दक्षिण भारत में आते, तो अभी तो जगन्नाथपुरी के पास में है।
हाँ,
वही साक्षी गोपाल है ना?
वही साक्षी गोपाल है। अच्छा सवाल पूछा। तो साक्षी गोपाल पहले विद्यानगर आ गए दक्षिण भारत में, उसके बाद जगन्नाथपुरी के राजा ने जब इस राजा के ऊपर विजय प्राप्त की दक्षिण भारत के ऊपर, तो उसने भगवान से निवेदन किया कि आप मेरे राज्य में चलिए, मेरे राज्य में चलिए। तो उनको लेकर के वो जगन्नाथपुरी आ गए, जगन्नाथपुरी में आ गए थे। जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल का थोड़ा वो क्या कहने लगे, वो सब भोग खाने लगे, तो जगन्नाथ जी के उनको दूर हटाओ थोड़ा तो उनको फिर यहाँ पे लेके आ गए। अभी यहाँ पे है, थोड़ा जगन्नाथपुरी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में ऐसा आपस में एक प्रेम वो कलह हुआ जगन्नाथ जी के साथ साक्षी गोपाल का, बोलते सब वो मेरा भोग खा रहे हैं ना, तो उनका भोग व्यवस्था सब अलग करो, उनका अलग करो सिस्टम पूरा। तो फिर उनको यहाँ पे लेके आ गए। और किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो भगवान के शिव विग्रह सेवा सेवा का नियम या जो भी हरे कृष्णा तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरी प्रार्थना है कि कोल्हापुर में शीघ्र अति शीघ्र भगवान के शिव ग्रह उनका स्थापना हो और सुंदर रूप से उनका सेवा पूजा श्रृंगार आदि सब शुरू हो जाए ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा